श्रीमद्भागवतम स्कंद छे अध्याय 19 श्लोक नंबर 25 बोर्ड पर लिखा हुआ है। लगभग छठा स्कंद आज पूरा होने जा रहा है। बहुत दिनों से हम लोग छठे स्कंद को सुनते आ रहे हैं, जो भक्तों के लिए भागवत में बताया गया है कि भक्तों का सर्वश्रेष्ठ पोषण करने वाला छठा स्कंद है। भक्ति की कैसे पोषण होती है और भक्ति करने वाला व्यक्ति शुरू में किसी भी प्रकार की उसकी विचारधारा हो, लेकिन अगर नियम फॉलो कर रहा है, भगवत भक्ति के पथ पर वो टूटी फूटी ढंग से भी अगर चल रहा है, तो उसके अंदर एक न एक दिन शुद्धता आएगी। इस अध्याय का या इस स्कंद की समाप्ति के लास्ट में यही बात बताई गई है, क्योंकि हम लोग उस कथा को सुन चुके हैं कि शुरू में इंद्र की भी क्या प्रवृत्ति थी, क्या भावना थी, और माँ दीति का भी क्या भाव था, ये चीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन दोनों की स्थिति भक्ति के संगति की संगत करने से दोनों की स्थिति ऐसी बन गई कि दोनों मित्रवत व्यवहार करते हुए अपने अपने धाम को गए। और यही बात इस अध्याय के लास्ट वाले श्लोक में या आज वाले श्लोक में या इससे पहले वाले श्लोक में भी यही बात बताया जा रहा है, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही है पुंसवन व्रत की विधि या वर्णन। क्योंकि शुरू शुरू में ही सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न किए कि मैं इस पुंसवन व्रत की विधि को विस्तारित रूप से सुनना चाहता हूं, इसलिए आप विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने इसके विधि विधानों का विस्तार से वर्णन किया इस अध्याय के अंदर, और विस्तारित रूप में वर्णन करने के बाद लास्ट वाले श्लोक में भी जो इस स्कंद की समाप्ति है उसके भी लास्ट वाले श्लोक में यही बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आपने विस्तार से वर्णन करने के लिए पुंसवन व्रत के विषय में कहा, तो मैंने विस्तार रूप से इसका वर्णन किया, इसलिए इस अध्याय के या इस स्कंद के सारांश को हमें इस ढंग से समझना चाहिए कि जो हम लोगों के पोषण का जो विधि विधान बताया गया है इस स्कंद के अंदर, नाम की महिमा बताई गई है, भक्त की संगति की महिमा बताई गई है, व्रत की महिमा बताई गई है, अन्य चीजों के पोषण करने वाले साधनों का वर्णन इस स्कंद के अंदर बताया गया है। हम लोग श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 25। एतत् चरित्वा विधिवत् व्रतं विभो अभीष्टितार्थं लभते पुमानिह स्त्री चेत् दास्थाय लभेत सौभगम् श्रियं प्रजां जीवपतिं जसो गृहं। एक्चुअली ये चतुर्पदी श्लोक है, ये चार लाइन का श्लोक है, लेकिन प्रभु जी ने दो ही लाइन में कर दिया है। जहाँ जहाँ विशेष रुकना है वहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। एतत् चरित्वा विधिवत् व्रतं विभो, अभीप्सितार्थं लभते पुमानिह। स्त्री चैद दास्ताय लभेत सौभगं, श्रियं प्रजां जीवपतिं जसो गृहं। एतत् चरित्वा विधिवत् व्रतं विभो, अभीप्सितार्थं लभते पुमानिह। स्त्री चैत दास्ताय लभेत सौभगं, श्रियं प्रजां जीवपतिं जसो गृहं। हरे कृष्ण। तो श्लोक नंबर 18 कल श्री कृष्ण हरि प्रभु ने 18 नंबर श्लोक को उन्होंने लिया था। उसके बाद के श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो बाद के श्लोकों को भी हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, उनके अनुवाद को मैं पढ़ रहा हूँ। श्लोक नंबर 19 और 20। मनुष्य को चाहिए कि इस भक्तिपूर्ण विष्णु व्रत को माने और किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने से इससे विचलित न हो। उसे चाहिए कि नित्य प्रति ब्राह्मणों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को बचा प्रसाद, पुष्पमाला, चंदन तथा आभूषण अर्पित करके पूजा करे। स्त्री को चाहिए कि अत्यंत भक्तिपूर्वक विधि विधानों के अनुसार भगवान श्री विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को अपने तत्पश्चात भगवान विष्णु को शयन करावे और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार पति तथा पत्नी शुद्ध हो जाएंगे और उनकी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। यह ध्यान देने की बात है कि सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सावधान करते हुए ये बातें कहते जा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस पुंसवन व्रत को अति सावधानी के साथ अगर इस नियम का पालन करेगा तो उसकी सारी कामनाएं, उसकी सारी कामनाएं जो हैं वो पूरी होगी। श्लोक में आया है विष्णु व्रतम विदम। जो विष्णु के व्रत का पालन करता है निश्चित ही उसका कल्याण होता है, और यही विधि विधान वैष्णव संप्रदाय में चलते आ रहा है कि जितने भी वैष्णव व्रत हैं उसका पालन करने के विधि विधान हमारे आचार्य लोग बताते हैं। श्लोक नंबर 21। साध्वी स्त्री को चाहिए कि पूरे वर्ष तक इस भक्ति को निरंतर करे। जब एक वर्ष बीत जाए तो उसे चाहिए कि कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर की पूर्णिमा को उपवास करे। इन अनुवादों को पढ़ने के बाद यह बात झलकती है कि सुखदेव गोस्वामी तो राजा परीक्षित के प्रति संकेत कर ही रहे हैं, लेकिन इस व्रत को करने का जो संकेत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी स्त्री के लिए। पुरुष तब कर सकता है इस व्रत, पुंसवन व्रत को, जब स्त्री असमर्थ हो, क्योंकि पिछले वाले श्लोक में आया है कि जब स्त्री इस व्रत को करने में असमर्थ हो तब पुरुष इस व्रत को कर सकता है। तो इससे यह बात झलकती है कि यह व्रत विशेष करके स्त्रियों के लिए करने के लिए आदेश किया जा रहा है, और यह प्रसंग भी माता दीति के लिए ही इस व्रत का विधि विधान कश्यप जी बताए थे। इन श्लोकों के आगे वाले श्लोकों में यह बात आएगी कि इस व्रत का जो ठीक ढंग से पालन करता है उसके कैसे जो सौभाग्य के दरवाजे हैं खुल जाते हैं, अर्थात जो उसके जीवन में जितनी भी अभद्र स्थितियां होती हैं वो अपने आप सुलझती जाती हैं। श्लोक नंबर 22 को हम पढ़ रहे हैं कि दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करके और भगवान कृष्ण की पूर्ववत पूजा करके गुह्य सूत्रों से वर्णित पाक यज्ञ विधि के अनुसार भोजन बनावे, घी से खीर तैयार करें और पति को चाहिए कि वह इस सामग्री से अग्नि में 12 बार आहुति दे। ऐसे यज्ञ शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं कि जिन यज्ञों के जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको करने के लिए खीर की भी आहुति दी जाती है, चारू बनाया जाता है और उसको भी जैसे घी की आहुति हम डालते हैं अग्नि के अंदर वैसे उसकी भी आहुति दी जाती है। अब श्लोक नंबर 23, तत्पश्चात वह पति ब्राह्मणों को संतुष्ट करे और जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें तो अपने सिर के बल उन्हें प्रणाम करे और उनकी अनुमति से प्रसाद ग्रहण करे। देखिए भागवत व्यवहारिक ज्ञान को भी सिखाता है, साधु को कैसे साधुता अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि कोई भी जब पुरोहित बन करके यज्ञ यज्ञांत करता है या पुरोहित बन करके कथा श्रवण करता है तो अगर वो ठीक ढंग से कथा का श्रवण करता है तो उसके अंदर 7 दिन के श्रवण पर्यंत उसके अंदर कुछ परिवर्तन दिखते हैं, भले बाद में कुसंगति के प्रभाव से उसके अंदर बदलाव आ जाए लेकिन कुछ दिनों के लिए उसके जीवन में बदलाव दिखता है। इसलिए यज्ञ करने का भी फल का यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ के अंदर जितने भी ब्राह्मण हैं उनके साथ कैसे बर्ताव करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करनी चाहिए, उसका भी इन श्लोकों के अंदर वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों को शीर के तरफ से प्रणाम करने का अर्थ क्या है कि इस शीर को ब्राह्मणों के चरणों के ऊपर रख करके प्रणाम करें। लोग शर्म करते हैं किसी को प्रणाम करने में लेकिन प्रणाम से अपने हृदय की सारी मलानी जाती है, सारी जो मलिनता है गंदगी है किसी को प्रणाम मात्र करने से श्रद्धा के साथ उसकी मलिनता चली जाती है। ऐसे देहातों में अगर कोई शादीशुदा वाली स्त्री है तो अपने से बड़े स्त्रियों को अगर वो प्रणाम करती है या बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करती है तो लोग आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यती भव सुहागिनी भव, मतलब सदा सौभाग्यती बनी रहो, मतलब अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति करो। लेकिन इस व्रत के अंदर ये बात बार बार आया है सौभगम, क्योंकि उसकी सौभाग्य के जो दीवार है तब खुलते हैं जब श्री और श्री के पति की पूजा की जाती है और ठीक से व्रत और नियम का पालन किया जाता है तब उसके सौभगम उसके सौभाग्य के दरवाजे खुलते हैं, उससे पहले नहीं। इस अध्याय में यह भी बात संकेत की जा रही है कि हमें पूजा करनी चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का पूजा करने की अनुमति दी गई है और लगभग हर शास्त्रों में यह बात बताई गई है कि कलयुग के अंदर जुगल जोड़ी की उपासना सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, जितने भी जुगल स्वरूप हैं उनकी उपासना सर्वश्रेष्ठ बताई गई। देखिए यहां ब्राह्मणों को प्रणाम करने पर भी बल दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और आगे वाले श्लोक में आया है कि आचार्यम अग्रतः कृत्वा वाग्यता सह बंधुवे, जब यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तो जो पुरोहित है वो आचार्यों को आगे करके आदर पूर्वक उनको आसन देता है, बैठाता है, उसके बाद आदर के साथ उनको प्रसाद वितरण करता है और आदर के साथ उन्हें खिलाता है। बताया गया है इन श्लोकों के अंदर, जैसे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि प्रसाद या सुगंधित माला या जो यज्ञ से बची हुई अवशेष मतलब प्रसाद है उसको ग्रहण करने से सारी स्थितियां शुद्ध हो जाती है। तो इस बात का उल्लेख श्रीमद्भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर उद्धव जी भी भगवान श्री कृष्ण से यह बात बताए हैं कि हे कृष्ण, आप अपने लीला स्मरण करके आप तो अपने धाम जा रहे हैं लेकिन मुझे यहां रुकने के लिए आदेश दे रहे हैं। मैं तो चाहता था कि मैं आपके साथ जाऊं लेकिन आप मुझे आदेश दे रहे हैं कि नहीं आप यहीं रहो, तो मैं जहां तक अभी आपके संगति से जो सुना हूं जो जान पाया हूं उसका निर्णय यही है कि त्वयोपभुक्त स्रगंध वासो अलंकार चर्चित उच्छिष्टो भोजिनो दासा तो माया जय मही। हे कृष्ण, आपने मुझे आदेश दे रहे हैं कि आप यहीं रुको, हे उद्धव तुम मेरे भक्तों को उपदेश देने के लिए उनको संतावना देने के लिए आप यहीं रहो, तो मैं जहां तक जानता हूं कि जब आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर त्वयुक्त उपभोग जो आपके द्वारा त्वय उपभोक्त स्रगंध जो आपके द्वारा भोगा हुआ स्रगंध का अर्थ है जो फूलों से बनाया हुआ माला है, वह जब आपका प्रसादी माला मुझको मिला हुआ है तो मैं यह जानता हूं कि उस प्रसादी माला को केवल धारण करने से मैं इस माया जगत से अपने आप को पार कर लूंगा। एक ही चीज का वर्णन वहां नहीं कर रहे उद्धव जी, कह रहे हैं कि त्वयो भुक्त स्रगंध वासो अलंकार चर्चित उच्छिष्ट भोजन, कहते हैं कि आपके गले में चढ़ाया हुआ माला, आपके शरीर में पहनाया हुआ वस्त्र, आपके चरणों में लगाया हुआ सुगंधित इत्र या तेल, या आपके द्वारा भोगा हुआ प्रसाद, इन वस्तुओं का जो भक्त अपने जीवन में सदुपयोग करता है तो उद्धव जी कहते हैं कि तव माया जय मही। हे भगवान, मैं भले आपके साथ आपके धाम जाना चाह रहा हूं लेकिन जब ये सारी वस्तुएं मुझको मिली हुई है आपकी कृपा से तो तव माया जय मही, आपके माया से मैं अनायास ही पार हो जाऊंगा, क्योंकि ये वस्तुएं मुझको मिली हुई है। अब सोचिए कितने हम लोग आसान तरीके से लेते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ फूल लेते हैं और इत्र जत्र तत्र कहीं फेंक देते हैं, उनके गले में डाला हुआ माला हम पहनते हैं लेकिन उसको कहीं फेंक देते हैं, क्योंकि भागवत के अंदर वर्णन है कि भगवान अगर निर्जीव पदार्थ को भी अगर टच कर देते हैं या अपने दृष्टिपात से किसी को देख देते हैं तो उसके अंदर कार्य करने की स्थिति आ जाती है। तो डायरेक्ट भगवान में और भगवान के द्वारा भोगी हुई माला और वस्त्र में कोई अंतर नहीं है। सावधान कर रहे हैं उद्धव जी कि इस प्रकार की स्थितियां जिनको मिली हुई है उनको माया से पार जाने के लिए कोई शंका नहीं है, लेकिन ठीक से इसको सदुपयोग अपने जीवन में लाए काफी है। भगवान का उच्छिष्ट मतलब उनका जूठा भोजन हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, लेकिन प्रसाद समझ करके खाते तो बहुत आगे गए होते हैं। अगर उस माला को भगवान का डायरेक्ट भोगा हुआ समझ करके अगर ग्रहण करते तो हम लोग बहुत आगे गए होते, लेकिन वहीं के वहीं हैं। लेकिन ये इससे आप निराश मत होइए, निश्चित एक दिन उनकी ऐसी कृपा होगी जिसको मतलब जिसके बल पे हम इस संसार में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा छुई हुई वस्तु को अगर हम स्पर्श कर लिए तो एक न एक दिन वो अपनी चमत्कार दिखाएगी। अवश्य रक्षिवे कृष्ण करिवे विश्वास, अवश्य कृष्ण के द्वारा भोगी हुई वस्तु हमारी रक्षा करेगी, हमको बचाएगी, वो अपनी शक्ति दिखाएगी, लेकिन हम उसको उस ढंग से लें। बाल बार बार आया है पिछले वाले श्लोकों में कि बचे हुए प्रसाद अवशेष को ग्रहण करनी चाहिए, भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई माला को ग्रहण करनी चाहिए, उनके व्रत में जो त्रुटियां हैं उनसे बचनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो उनकी कृपा है लेने लायक बनने का हम प्रयास करते रहेंगे और उनको उस ढंग से हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन इस जगत से मतलब इस जगत माया जगत से अपने आप को बचा लेंगे। एक कवि ने लिखा है कि जाको पालनहार है माखन चाखन हार, कि जिसकी रक्षा करने वाला माखन को चखने वाला है उसका पूरा संसार क्या बिगाड़ सकता है। अगर हम उसकी कृपा पर निर्भर हैं, उसकी कृपा को केवल एकमात्र अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो सारा संसार मिलकर के क्या बिगाड़ सकता है जीव को। स्थितियां ये है कि हम उसको उस ढंग से लें जिस ढंग से शास्त्रों में बताया गया है। श्लोक नंबर 24, पति को चाहिए कि भोजन करने के पूर्व सर्वप्रथम आचार्य को आसन दे। हम लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, पहले जहां भगवान को हमें बैठाना है उस स्थान को साफ करते हैं, वहां खाने के लिए उनको टेबल लगाते हैं, उनको बैठने के लिए आसन लगाते हैं, फिर भगवान के चरणों में फूल दे करके पुजारी भगवान को प्रार्थना से बुलाता है उस आसन पर कि भगवान इस आसन को ग्रहण कीजिए और इस आसन पर आकर के मेरे द्वारा जो आपको भोग लगने के लिए जो वस्तु रखी गई है कृपा करके उसको स्वीकार कीजिए। तो पहले गुरु को प्रणाम करता है, गुरु को देता है, गुरु अपने गुरु को देते हैं और वो उस परंपरागत विधि से भगवान के पास पहुंचता है और तब भगवान उसको ग्रहण करते हैं और यही विधि यहां बताई जा रही है। तीन बार गुरु का मंत्र पढ़ा जाता है, तीन बार प्रभुपाद का मंत्र पढ़ा जाता है, तीन बार गौर निताई का मंत्र पढ़ा जाता है, तीन बार भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ा जाता है, तब भगवान को खाने के लिए कहा जाता है, अब खाइए। यह विधि विधान है। अगर हम उस भाव से खिलाते हैं, उस विधि विधान से खिलाते हैं, तो भगवान की हिम्मत नहीं है कि वो भगवान के भक्तों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा दी वस्तु को न खाएं। ब्रज के लोग तो आज भी कहते हैं तुम्हारा भगवान होगा लेकिन मेरे लिए तो आज लाला ही है, हम जहां बैठाएंगे वहां बैठेगा, जहां खिलाएंगे वैसे खाएगा। आज भी ब्रज के लोग इस भाव में रहते हैं कि तुम्हारे लिए कृष्ण भगवान होगा लेकिन मेरे लिए लाला है। जैसे हम आदेश देंगे, जहां बिठाएंगे, जहां सुलाएंगे, जो खिलाएंगे उसको खाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन कहा जाता है। भगवान अपने भक्तों के इतने वशीभूत हैं कि जो भक्त जब भी चाहे, जहां भी चाहे, उनको बुला लेता है। अब आज के श्लोक पर आइए कि एतत् चरित्वा विधिवत व्रतम विभो। इस प्रकार जब विधिवत इस नियम का पालन किया जाता है तब अपने अभिषिक्त जो अविशार्थ, मतलब अपने मन में जो भाव है, जो भावनाएं हैं, लभते, वो पूरा होता है, हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। चाहे जिस प्रकार की भावना है, अगर हम भगवान से अगर कुछ मांगने की भी दृष्टि से अगर उनके पास आते हैं तो भगवान उसको देते हैं। अगर भगवान नहीं दे रहे तो इस संसार में और कौन है जो दे रहा है? किसके बाप की ये संपत्ति है जिसको हम लोग भोग कर रहे हैं? केवल कृष्ण की प्रॉपर्टी है। इसलिए भगवान को कहा गया है माधव, माँ मतलब लक्ष्मी, धव मीन्स पालन करने वाला। जो लक्ष्मी का पालन करने वाला है उसको माधव कहा जाता है। इसलिए उसमें बताया गया है जो ब्रह्म संहिता हम लोग पढ़ते हैं कि हजारों हजारों लक्ष्मियां जिनके चरणों की सेवा करती हैं, गोविंद आज पुरुषम तम हम भजामी, वैसे भगवान गोविंद की हम पूजा करते हैं। यदि इस व्रत का, यदि इस व्रत या अनुष्ठान को शास्त्रानुसार किया जाए तो इसी जीवन में मनुष्य को ईश्वर से मनोवांछित वर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन शर्त सुखदेव गोस्वामी ने रखा कि शास्त्र के अनुमोदित आज्ञा के अनुसार। शास्त्र ने जिस प्रकार से अनुमति दिया है, अगर उस ढंग से हम इस व्रत का पालन करते हैं, इस नियम का पालन करते हैं, तो जो इच्छा है भगवान उसको पूरा करते हैं। हम लोग तो केवल भक्त ही हैं तथा कथित, लेकिन अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके हम लोग अपनी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पूर्ण रूप से विश्वास है भगवान के ऊपर। आज थोड़ी सी कुछ उलझन आ जाता है किसी के जीवन में तो कितना हम लोग विचलित हो जाते हैं, पता नहीं हमने भगवान का क्या बिगाड़ा कि भगवान हमारे साथ ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूर्ण रूप से जो आत्मसमर्पण होना चाहिए, कृष्ण के ऊपर निर्भर होना चाहिए, वो हम निर्भर नहीं हैं। अगर हम निर्भर होते तो इस प्रकार की भावना अपने हृदय में नहीं आती। भले हम लोग अपने को तथाकथित भक्त कहें लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर हम भगवान के ऊपर नहीं हैं। भागवत के अंदर एक शब्द आया है मात्रा प्रसिद्धे। मात्रा प्रसिद्धे शब्द का अर्थ है कि हम इंद्रिय तृप्ति में इतना दक्ष हैं कि हम ब्रह्मा जी से भी चतुर हैं, अपने को ऐसा अनुभव करते हैं। मात्रा प्रसिद्ध है, इंद्रिय तृप्ति के जितने भी साधन हैं उसको हम इकट्ठा करने में बहुत दक्ष हैं। प्राण की आहुति, इस जीवन की आहुति, इस शरीर की आहुति दे करके भी हम इंद्रिय तृप्ति के साधनों को इकट्ठा करते हैं। मात्रा प्रसिद्ध है, चाहे जीवन जाए लेकिन हमें इस संसार को भुगतना है, हमें ये वस्तु प्राप्त करनी है। उसी शब्द के बाद एक शब्द आया है, आत्मा प्रसिद्ध है। आत्मा प्रसिद्ध है का शब्द है कि केवल कृष्ण भावना भावित, कृष्ण संतुष्टि हेतु कार्य करना, कृष्ण को संतुष्ट करने में इतना दक्ष होना चाहिए कि जीवन की कितनी भी प्रतिकूलता की स्थिति में हमें विचलित नहीं होनी चाहिए, आत्म प्रसिद्ध बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य ही है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। भागवत के प्रथम स्कंध में ही कहा गया है कि संसिद्धि हरि तोषणम, तुम काम करो वैसा जिससे भगवान को संतुष्टि की अनुभूति हो, भगवान जिससे खुश हों। ऐसा काम मत करो जिससे भगवान को मुख मोड़ना पड़े। इसके संदर्भ में, इस श्लोक के संदर्भ में प्रभुपाद जी दो तीन लाइन तात्पर्य लिखते हैं श्रील प्रभुपाद महाराज की, कि यदि इस व्रत या अनुष्ठान को, नहीं तात्पर्य सुनिए, आज बंगाल में कोई स्त्री दीर्घ काल तक अपने पति के साथ साथ जीवित रहती है तो उसे अत्यंत भाग्यवान माना जाता है। एक स्त्री सामान्यतः अच्छा पति, अच्छी संतान, अच्छा घर, धन, ऐश्वर्य इत्यादि की कामना करती है, क्योंकि तीन स्थितियां, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसी को इकट्ठा करने में एक जीवन नहीं कितने जीवन बीते हैं। और मनुष्य होकर के भी हम इन्हीं तीनों की व्यवस्था में लगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत इन श्लोकों से हट करके है। प्रभुपाद का संकेत यह है कि पूरी पूरी आत्मनिर्भरता, जिसको स्त्री के हृदय में भाव है या पुरुष के मन में भाव है, अगर उसको पूरा करना चाहता है तो बिल्कुल आत्म प्रसिद्ध की स्थिति में आना चाहिए। अर्थात जब कृष्ण भावना भावित स्थिति में हम पूरा पूरा हो जाएंगे तो भक्त को खाने की, रहने की कोई चिंता नहीं रह जाती। जाको पालन हार है माखन चार, माखन चाखन हार। जब जिसके शरण में हम आए हैं तो वो हमारी रक्षा का, उसको चिंता होगी, हमें क्या चिंता है। और यह बात सत्य है शास्त्र के अनुसार कि जो व्यक्ति भगवान का शरण ले लेता है उसको दुष्ट लोग लाख सताना चाहते हैं लेकिन उनकी आसुरी जो प्रवृत्ति है उनके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाती। थोड़े देर के लिए लगता है कि परेशान कर देंगे लेकिन परेशान करने के बाद उसको पूरी तरह से हरा नहीं सकते, क्योंकि जब उस पूरा पूरा वो शरण ले लिया है भगवान का तो कितने भी असुर शक्तिशाली हों लेकिन उस व्यक्ति को हरा नहीं सकते। हम लोग समुद्र मंथन में पढ़ते हैं, समुद्र मंथन लीला में, कि अगर देखा जाए तो देवताओं से ज्यादा परिश्रम असुर लोग किए थे। असुर लोग तो ऐसे सर्प के मुख के पास से पकड़ करके समुद्र मंथन कर रहे थे कि उनके मुख से जलती हुई अग्नि निकल रही थी, झुलस रहे थे, और देवता लोग पूछ को पकड़ करके मंथन कर रहे हैं। एक ही बाप के पुत्र हैं और दोनों बराबर परिश्रम किए, लेकिन देखिए कि भक्ति का क्या फल मिला वहां। देखा जाए तो देवताओं से ज्यादा कष्ट में रह करके असुर लोग समुद्र मंथन किए। शेष नाग जी के मुख से जो ज्वाला निकल रही थी, उस ज्वाला से वो जल रहे थे, फिर भी वो समुद्र मंथन में कार्य कर रहे थे, लेकिन फल में देखिए कितना अंतर हुआ। केवल देवता लोग पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण थे भगवान को, तो देवताओं के हाथ से गई हुई अमृत की जो कलश थी वो फिर भगवान स्वयं अपने हाथ में लिए। केवल देवताओं के भक्ति के बल पे भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, असुरों को मोहित किए, और वो अपने आप भगवान की सुंदरता को देख करके असुर लोग अमृत का जो कलश था भगवान के हाथों में दे दिया। और भगवान विचित्र स्थिति से उनको मोहित करते गए अपनी बहिरंगा शक्ति से, और अपने देवताओं को ऐसे ढंग से अमृत की कृपा बरसाते गए कि देवता लोग तो पूरित हुए, अर्थात उनकी स्थितियां सही हुई, लेकिन असुर लोग असहाय की स्थिति में अब भगवान को मारने के लिए दौड़े। लास्ट हम इससे जाहिर होता है कि कितना भी संसार में हम कठिन परिश्रम कर ले, लेकिन जब तक भक्ति अपने अंदर नहीं है या भगवान को खुश करने का कोई हम साधन नहीं कर रहे हैं, तो उस परिश्रम से कुछ हाथ नहीं लगेगा। वैष्णव कवि एक विद्यापति जी ने लिखा है एक पद के अंदर कि तातल सैकेत बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे। इस पद का अर्थ उससे तुलना कर रहे हैं विद्यापति जी कि तातल सैकेत बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे। इसका उदाहरण देख करके यह सब इसकी तुलना विद्यापति जी करते हैं संसार की इंद्रिय तृप्ति से, कि जैसे मरुस्थल में इतनी गर्मी पड़ती है कि उस मरुस्थल के गर्मी को मिटाने के लिए बहुत जल की आवश्यकता होती है। अगर एक बूंद जल उस मरुस्थल के अंदर डाला जाए तो उससे उसकी तृप्ति नहीं होगी। जो इंद्रिय भोगी जीव है उसको एक जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए काफी नहीं होता, पूरे जीवन का पूरा पूरा समय इंद्रिय तृप्ति में उसको ऐसा लगता है कि जैसे मरुस्थल में एक बूंद जल, इतना जल्दी उसको समय बीतने की महसूसी होती है कि वो सोचता है कि वो ये जीवन तो हमारा क्षणभंगुर जैसा बीत गया, हमने अभी कुछ नहीं संसार को भोगा। तातल सैकत बिंदु सम वारी बिंदु सम, तो इसको भोगने में सहायता कौन कौन करते हैं कि सुतमित रमणी समाज है। सुत मतलब अपने पुत्र या दूसरा कहते हैं कि मित्र है, सुतमित रमणी समाज है। सुत मित और रमणी, इन्हीं तीनों के मोह में हम इस संसार में इतने इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाते हैं कि हमारा यह जो जीवन है एक बिंदु जल के बराबर, अर्थात जिस प्रकार मरुस्थल में मरुस्थल की गर्मी को एक बिंदु का जल शांति नहीं कर सकता, उसको मिटा नहीं सकता उसके गर्मी को, वैसे अपनी महसूसी होती है। लेकिन ठीक स्थिति में आगे वाले पंक्ति में उन्होंने लिखा है कि जैसे मरुस्थल के गर्मी को मिटाने के लिए समुद्र जैसे जल की जरूरत है, वैसे इस संसार की भोग की जो स्थितियां हैं, जो हमें एक बिंदु जैसा लगता है, इसको कम करने के लिए समुद्र जैसे भक्ति करने की जरूरत है, अर्थात साधुओं की इतनी संगति करने की जरूरत है कि यह जो संसार की जो भोग की प्रवृत्ति है, जो हमें एक बूंद जैसे समय जैसा प्रतीत होता है कि हमारा जीवन बीत गया, उससे ज्यादा भक्ति करने की जरूरत है कि यह संसार हमें तुच्छ दिखे। इस संसार में भगवान के भक्ति के अलावा इस जगत में और कोई अपना नहीं है, भगवान जीव का जितना अपने हैं उतना और कोई नहीं है। भागवत के दसम स्कंद के अंदर एक शब्द आया है कि यत श्रवणादिनी, कहा जाता है कि जहां भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन अगर किया जाता है तो वहां किसी की भी नहीं चलती, केवल भगवान और भगवान के भक्त का चलता है। सारे दुनिया के लोग जहां अगर भगवान की कथा चल रही है और भक्त ठीक ढंग से भगवान की कथा सुनने में लगा हुआ है, तो वहां आकर के उसको, उस भक्त को अगर वो बाधित करना चाहे तो बाधित नहीं कर पाएंगे। यत श्रवणादिनी, सुनने की इतनी महत्ता है, भगवान कहते हैं कि जहां केवल इच्छा मात्र कोई व्यक्ति अगर इच्छा करता है मेरी कथा सुनने का, तो मैं उसके हृदय में आके बंदी बन जाता हूं। तो जिसके हृदय में भगवान रक्षक के रूप में बैठे हुए हैं, वो संसार से आसक्त व्यक्ति उस भगवत तन्मय व्यक्ति का क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यह है भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करने की स्थिति। अब इस अध्याय का फलश्रुति का वर्णन बताया गया है लास्ट के श्लोक में कि अगर कोई भी स्त्री अगर इस व्रत को करता है तो उसका सौभाग्य खुल जाता है, कोई अविवाहिता लड़की अगर इस व्रत का पालन करता है या करती है, दोनों लड़के और लड़की दोनों के लिए, क्योंकि फलश्रुति सबके लिए समान है। तो अगर अविवाहिता लड़की अगर इस व्रत का पालन करती है कि पति हमें अच्छा मिले, तो वैसा ही होता है, अच्छा ही पति मिलता है। जो जिस स्त्री का पुत्र मर जाता है वो प्रजाहीन है, तो अगर प्रजा की इच्छा लेकर के, अर्थात प्रजा के अर्थ यहाँ है कि अगर पुत्र की इच्छा लेकर के अगर वो व्रत करती है तो उसका इस व्रत से गोद भरता है, अर्थात प्रजा की उत्पत्ति होती है। जो स्त्री अपने को अपने जीवन में दुर्भाग्यहीन समझती है, तो अगर अपने भाग्य को बदलना चाहती है तो इस पुण्यसौन व्रत का अगर वो पालन करती है तो उसका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है। जो व्यक्ति अपने पितरों के उधार हेतु अगर इस पुण्यसौन व्रत का पालन करता है तो हजारों लाखों साल से नरक में पड़े हुए पितरों का इस पुण्यसौन व्रत का पालन करने से उसका उधार हो जाता है। इतनी महत्ता इन शास्त्रों में बताई गई इस व्रत के अंदर। यदि अविवाहिता कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे सुंदर पति मिलता है, यदि अवीरा स्त्री अर्थात जिसका कोई पति या पुत्र नहीं है, जो असहाय है, अगर इस अनुष्ठान को करती है तो उसे वैकुंठ जगत का लाभ होता है। जिस स्त्री की संतानें जन्म लेने के बाद मर चुकी हों, उसे दीर्घजीवी संतान के साथ ही साथ संपत्ति भी प्राप्त होती है। अभागी स्त्री का भाग्य खुल जाता है और कुरूपा स्त्री सुरूपा हो जाती है। भागवत से ऐसा कोई उदाहरण बताइए जिसको भगवान ने टच किया हो और खुब जा। तीन जगह से टेढ़ी टेढ़ी थी, लेकिन भगवान ने जैसे उसको छुआ वो परम मतलब रूपवती हो गई, जिसका नाम शैलेंद्री पड़ा। भगवान ने केवल उसको छू दिया और इतनी वो रूपवती हो गई कि वो भगवान के रूप पर पहले से ही मोहित थी, और भगवान ने जैसे छुआ उसको स्पर्श किया तो कहे कि अब मुझको दूसरा पुरुष कोई स्पर्श नहीं कर सकता आपके अलावा, अर्थात वो भगवान की बन गई। इस व्रत को रखने से रोगी पुरुष को रोग से मुक्ति मिलती है और कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। यदि इस कथा को कोई अपने पितरों तथा देवों को श्राद्ध आहुति देते समय सुनाता है तो देवता तथा पितृलोक के वासी उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस अनुष्ठान के करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी उस पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण फलश्रुति यह है कि जिस कार्य को करने से हमारे जुगल जोड़ी प्रसन्न हो वही कार्य करनी चाहिए। आत्मतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कलयुग में बताया गया है, भगवान को खुश करने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है केवल भगवान का नाम। नाम से अर्थ है जिस व्यक्ति से हम ज्यादा प्रेम करते हैं प्यार करते हैं उसी का नाम लेते हैं, उसी का सकल हमारे मन में गूंजता रहता है, उसी के वाक्य हमारे मन में चलता रहता है, उसी का रूप हमारे मन में चलता रहता है। इसलिए सबसे बड़ी फलश्रुति यह है कि भगवान जुगल जोड़ी की दर्शन होती रहे अपने जीवन में। इस अनुष्ठान के करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी उस पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। हे राजा परीक्षित, अब देखिए सावधान कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कि हे राजा परीक्षित, मैंने पूरी तरह से बता दिया कि दीति ने किस प्रकार इस व्रत को किया और उसे श्रेष्ठ पुत्र मरुतगण प्राप्त हुए। मैंने तुम्हें यथाशक्ति विस्तार से सुनाने का प्रयत्न किया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित ने पहले ये प्रश्न किया था कि इस व्रत का विस्तार से वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता। देखो अगर सुनने की रुचि है तो कहने वाला भी थकता नहीं कथा करने में, क्योंकि जहां सुनने की सही स्थिति है तो श्रोता की स्थिति को देख करके वक्ता की भी इच्छा होती है कि अपने हृदय में जितना भी हम भगवान के प्रति जो गुण हम ग्रहण किए हैं उसको उलझ दें, उसको उगल दें, उसको सुना दें, उसके हृदय में हम परिवर्तन ला दें। भागवत के अंदर जो गुरु की योग्यता बताई गई है ब्रह्मण या उपपश्रमम, उसका अर्थ ही यही है कि शास्त्र में पारंगत होना चाहिए कि किसी के हृदय में किसी भी प्रकार की अगर आध्यात्मिक शंका है तो उसको शास्त्र के तरीके से छिंद करके उसके शंका को मिटा करके उस व्यक्ति को भगवत पथ पर ला देना चाहिए, वैसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। इसलिए सुनने के लिए मात्र हमारे पास जितना समय है उतना नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जो सुने वो ठीक से सुने कि हमने आज की कथा में क्या सुना, क्या बोला गया। आज तक अच्छे अच्छे लोगों से अगर पूछ दिया जाता है कि भागवत के अंदर चलो 18,000 श्लोक तो प्रचलित है कि 18,000 श्लोक है, लेकिन भागवत के अंदर कितना अध्याय है तो ऊपर नीचे देखने लगता है। भागवत के अंदर कितने अध्याय हैं तो पता नहीं प्रभु जी, मैंने तो गिना नहीं। अरे जिस पथ पर हम चल रहे हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करें ना। गीता छोटी सी पुस्तक है, भगवान ने 700 श्लोक कह दिया, उसके अंदर सिद्धांत रूप में सूत्र रूप में दे दिया, उसको हम रटते रहते हैं। 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। भागवत को भी तो पढ़ो, भागवत में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, कितने गृहस्थों के लिए हैं, कितने सन्यासियों के लिए हैं, कितने किसके लिए हैं, कितने भक्ति के लिए हैं, सब बताया गया है। जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो अपने जो ग्रहणीय विषय है उसको हम अपने जीवन में लागू करेंगे। इस अध्याय को, इस स्कंद को प्रणाम करते हुए हम लोग विराम देते हैं। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को प्रणाम करते हैं और हम लोग भी प्रणाम करते हैं कि भक्तों के पोषण के लिए जो छठा स्कंद बना है, हे छठा स्कंद, हमारा पोषण करते हुए कृष्ण के चरणों में हमारे मन को लगाओ, ताकि हम भगवत कथा सुनने में रुचि रखें और इसको सुन करके हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें और भगवान के बताए हुए पथ पर चल करके हम अपने इस जीवन को सार्थक बना सकें। ये चीज इस स्कंद के अंदर दिया हुआ है। और अगर इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो भागवत सब कुछ देने में समर्थ है। किम श्रुतै बहुभि शास्त्रै नाना शास्त्र पुराणै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जती। अकेला एकमात्र भागवत शास्त्र गर्जन करके कहता है कि अन्य शास्त्रों को पढ़ने में मत अपना समय गवाओ, एकमात्र मैं मुक्ति देने के लिए गर्जन करता हूं कि मैं तुम्हें भगवान के धाम ले जाऊंगा। अगर इस भागवत को अगर हम अपने जीवन का कंठाहार बनाते हैं, पढ़ते हैं प्रतिदिन, तो निश्चित भगवान के चरणों में प्रेम होगा। लेकिन पढ़े प्रतिदिन। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, गौर हरि प्रेमानंदे।